डेंजरस डेविल किंग। दादाजी की आंखें इस वक्त पूरी तरह से नम थीं, लेकिन नानी माँ के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये देखकर आहान एक बार फिर नानी माँ के गले लगकर रो दिया। तब ध्रुव ने आहान को डांटते हुए समझाया, अब आगे आहान ध्यान से सुनो और बाकी सब भी, आस्था भाभी को कोई कुछ नहीं बताएगा तो हमें आस्था भाभी से ये बात छुपा कर रखना होगा। आस्था भाभी अरमान भाई को कॉल करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन हमने सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अरमान भाई के फ़ोन की सिम चेंज कर दी है, जो अब आकाश भाई हैंडल करेंगे, ताकि आस्था भाभी का कॉल आने पर वो उठा सके। आस्था भाभी बारी बारी से सबको कॉल कर सकती है, लेकिन याद रखना, कोई भी अरमान भाई से आस्था भाभी के बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है? अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद सब लोगों ने फटाफट जहां भी अरमान की शादी के फोटो वीडियो रखे थे सब कुछ हटाना शुरू कर दिया। कोई भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि सब चाहते थे कि अरमान ठीक रहे। फिलहाल सब कुछ हटाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। सभी लड़कियां इस वक्त काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थीं, स्पेशली रश्मि और रौनक, क्योंकि दोनों ही प्रेग्नेंट थीं और लगातार काम कर रही थीं, तो अब तक दोनों थक कर चूर हो गई थीं। वहीं वसुंधरा और वीर सारी चीज़ों को अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहे थे। अरमान की याददाश्त जाने वाली बात उन्हें नहीं पता थी और ना ही किसी ने उन्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो इतना ज़रूर समझ चुके थे कि घर में कुछ ना कुछ बड़ा कांड हुआ है। दादाजी ने बहुत कम शब्दों में वसुंधरा को साफ साफ कह दिया, अगर तुमने इस घर में किसी भी तरह की चाल चलने की कोशिश की तो ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। वसुंधरा अब अपनी ज़िंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वैसे भी 6 महीने सड़कों की कष्ट सहकर उसे अच्छी खासी अक्ल आ चुकी थी। इस बार वो जो कुछ भी करना चाहती थी पूरी प्लानिंग के साथ करना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर राजवीर, जो कि अपने डाक विला के सामने खड़ा हुआ था, जिसने सम्राट के जले हुए घर को एक बार फिर से डाक विला में बदल दिया था, वो अब वहाँ बैठा हुआ था। कुछ दिनों के अंदर राजवीर ने अपनी पावर, पोजीशन और पैसों का इस्तेमाल करते हुए उस विला को एक बार फिर से खतरनाक रूप दे दिया था। सम्राट ने भी उस विला को काफ़ी खतरनाक बनाकर रखा था, लेकिन राजवीर ने उसमें अपनी जान भर दी थी। राजवीर कमाल का जीनियस इंसान था, उसने उस विला को पूरी तरह से तब्दील कर दिया था। उसने सम्राट को फ़ोन करके उसकी जानकारी ली थी कि इस वक्त सम्राट कहाँ है। सम्राट उस वक्त लंदन में मौजूद था, क्योंकि उसने कई सारी कंट्री में अलग अलग जगह पर कई सारी प्रॉपर्टी खरीदी थी। हर जगह जाकर वो अपने प्रॉपर्टी को सेल आउट कर जितना हो सकता था उतना रुपया पैसा इकट्ठा करके वापस नाइजीरिया आने वाला था। उसे अब अरमान की तो कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि अरमान का मुकाबला सीधे सीधे राजवीर से होने वाला था। सम्राट समझ चुका था कि अब तो अरमान गया। अगर राजवीर ने अरमान को सज़ा देने का फैसला किया है तो वो उसे कोई नॉर्मल सज़ा नहीं देगा, वो उसे इतनी खतरनाक सज़ा देगा कि जिसके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएगा। इसीलिए सम्राट इस वक्त अरमान की तरफ से टेंशन फ्री था। साथ ही साथ उसे खुशी भी थी कि उसका गुरु यानी राजवीर अब पूरी तरह से उसके सपोर्ट में था। उसे बस खुद को राजवीर की नज़रों में सर्वश्रेष्ठ साबित करना था, जैसा कि वो बचपन से करता आ रहा था। वहीं राजवीर अपने सर पर लगातार टेप कर रहा था और कड़वाहट से बोल रहा था, अरमान तूने मेरी पत्नी को मुझसे अलग करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैं तेरी हर एक गलती माफ़ कर देता, पर तुझे मेरी पत्नी को मुझसे अलग नहीं करना चाहिए था। अरमान ने अबीर सिंह राठौर के साथ ही साथ आस्था के भाई अविनाश रघुवंशी की मदद से राजवीर की उस डाक विला में जहाँ उसने अपना विला बनाया हुआ था उसकी पत्नी की डेड बॉडी बरामद करके उसे मुखाग्नि दिलवा दी थी। ये बात राजवीर के दिल को भीतर ही भीतर जलाई जा रही थी और वो उस नफरत की आग में अरमान को जला देना चाहता था। जब अरमान ने शादी के फंक्शन में राजवीर की पत्नी के साथ ही राजवीर को भी मुखाग्नि देने के लिए अपने आदमियों के साथ भेजा था, लेकिन वक्त रहते ब्लैक डेविल किंग ने राजवीर को बचा लिया था। लेकिन राजवीर की आंखों में उसकी पत्नी की जलती हुई अग्नि की झलक आज भी साफ दिखाई देती थी। अचानक राजवीर ने हंसते हुए अपना चेहरा इमोशनल लेस और सीरियस कर लिया और अरमान की फ़ोटो देखकर एरोगेंट तरीके से बोला, बस बहुत हो गया, तूने मेरी पत्नी को मुखाग्नि दिलवाई थी, लेकिन मैंने तो तेरी पत्नी के जिंदा रहते ही तुझे उससे अलग कर दिया। और कमाल की बात तो ये है कि तुझे कभी पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। ये बोलते हुए राजवीर का गला कड़वाहट से भर गया और उसके होंठों पर खतरनाक मुस्कान थी। अचानक राजवीर ने उस वायरस को देखा जो उसने एक अनजान लड़की की मदद से अरमान के अंदर इंजेक्ट करवाया था। उसने उस लड़की को अरमान की जिंदगी में प्लांट करने का पूरा इंतजाम कर लिया था। वहीं दूसरी ओर फार्म हाउस पर अरमान को जल्दी ही दोबारा होश आ गया था। वो झट से उठ बैठा और बिना देरी किए एक झटके में खड़ा हो गया। जैसे ही सबने अरमान को होश में आते हुए देखा तो सब खुश हो गए, और जब टाइगर की नज़र उस पर पड़ी तो वो फौरन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में खुशी की एक चमक उभरी, लेकिन उसके चेहरे पर अरमान के लिए चिंता और बेचैनी भाव भी साफ साफ झलक रहे थे, जो उसकी खामोशी से भी ज़्यादा बोल रहे थे। टाइगर ने तुरंत अरमान को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन अरमान ने तुरंत अपने हाथों से ऐसा करने से रोक दिया और अगले ही पल अरमान ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए उसकी आंखों में देख के सवाल किया, टाइगर तुम कब से मुझे सहारा देने लग गए हो? जैसे ही अरमान ने बिल्कुल डेविल अंदाज में ये कहा, वैसे ही टाइगर तुरंत ही पीछे हट गया और चुपचाप हाथ बांधकर हल्का सा अपना सर झुकाए खड़ा हो गया। हालांकि जब से आस्था की मोहब्बत में अरमान में बदलाव आया था, तब से उसने टाइगर को अपने सामने सर झुकाने से मना कर दिया था, बल्कि टाइगर को भाइयों की तरह ट्रीट करने लगा था। अब एक बार फिर पत्थर दिल डेविल किंग टाइगर के सामने मौजूद था। वहीं मारिया तुरंत अरमान को फिक्र भरी नजरों से देख के अगले ही पल बोली, किंग अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आप ठीक हैं? मारिया का सवाल सुनकर अरमान ने अपनी गर्दन तिरछी करके मारिया को गहरी नजरों से देखा। अरमान के इस तरह से देखने पर मारिया की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मारिया कभी किसी से डरती नहीं थी, वो एकदम बेखौफ रहती थी, लेकिन आज अरमान को देखकर उसे अजीब तरह का डर लगने लगा था। वो तुरंत दो कदम पीछे हटकर टाइगर की तरह ही हाथ बांधकर खड़ी हो गई। तभी अरमान ने अपना कोट पहना और बड़े ही दबंग अंदाज में हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। एज यूजुअल टाइगर और मारिया उसके पीछे पीछे चलने लगे। अरमान उन्हें चलते हुए इंस्ट्रक्शन देते जा रहा था। मुझे याद है कल रात मैंने कुछ लोगों को बेदर्दी से मारा था और उसके बाद शायद किसी ने मुझ पर पीछे से हमला किया था। पता लगाओ वो आदमी कौन था और उसे मेरे सामने पेश करो। अरमान एज यूजुअल अपने बॉडीगार्ड्स यानी टाइगर और मारिया को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। ठीक उसी वक्त आकाश और सुमित अरमान के सामने एकदम से आ धमके। आकाश और सुमित को अपने सामने देखकर अरमान ने कंधे उचकाए और बेरुखे अंदाज में उनसे पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें किसी काम के लिए नहीं बुलाया, तो फिर तुम दोनों मेरे सामने यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही अरमान ने रूखेपन से उन दोनों से बात की, वैसे ही सुमित थोड़ा सा हैरान हुआ और अरमान के इतने रूखेपन से बोलने पर उनके दिल में दर्द सा उठा था। लेकिन सुमित तुरंत ही अपने इमोशंस को छुपाते हुए नॉर्मली बोला, अरमान हम तुम्हारे साथ घर चल रहे हैं, दादाजी का फोन आया था, वे कह रहे हैं कि हम तुम्हें साथ लेकर ही घर चलें।
ये सुनकर अरमान ने नाराजगी से अपने सर पर हाथ मार लिया और आकाश को देख के ऊंची आवाज में चिढ़ते हुए बोला, आकाश मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, दादाजी को समझाओ, दादाजी सिर्फ तुम्हारी बात सुनते हैं, उन्हें समझाओ। मुझे कोई शादीवादी नहीं करनी है, अरमान सिंघानिया की जिंदगी में शादी नाम की कोई चीज मायने नहीं रखती। अब जैसे ही अरमान ने डेविल अंदाज में ये कहा, वैसे ही ये सुनकर आकाश हड़बड़ा गया और मुंह बनाते हुए एकदम से सोचने लगा, ये यहाँ खड़े होके एटीट्यूड से मुझे कह रहा है कि उसे शादी नहीं करनी है, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि ये न केवल शादी कर चुका है बल्कि एक बच्चे का बाप भी बन चुका है। अंश के बारे में सोचते हुए अचानक आकाश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट तैर गई, जिसे अरमान ने नोटिस कर लिया था। फिर अरमान ने उसे घूरते देखा और एकदम से बरस पड़ा, आकाश मैंने तुम्हें कोई जोक सुनाया है क्या जो तुम अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? जाओ जाकर दादाजी को समझाओ, मैं किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगा और वो मुझे बेकार में परेशान करना छोड़ दे। ये बात कहते हुए अरमान की आंखें सिकोड़ती चली गई। फिर वो फटाफट अपनी शानदार कार में आकर बैठ गया था और मारिया ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। टाइगर ने चुपके से मारिया का हाथ पकड़कर उसे टोका, तुम ड्राइविंग मत करो। लेकिन मारिया ने उसे दबी हुई आवाज में समझाया, अगर मैं ड्राइविंग नहीं करूंगी तो किंग को शक हो जाएगा, इसलिए मुझे ड्राइविंग करनी होगी। मारिया की बात सुनने के बाद टाइगर उससे कुछ नहीं बोल पाया और मारिया के साथ ही आगे बैठ गया। फिलहाल मारिया ने अपनी पहली वाली स्टाइल में ड्राइविंग करनी शुरू कर दी थी। आकाश और सुमित अलग अलग कार से वहां आ रहे थे, लेकिन उन्होंने निकलने से पहले ध्रुव को मैसेज छोड़ दिया था कि अरमान घर के लिए निकल चुका है। अब मारिया, जो कि स्पीड ब्रेकर्स और अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखते हुए धीरे से कार चला रही थी, अब उसकी ड्राइविंग देखकर अरमान अगले ही पल चौंक गया और उसने मारिया से ऊंची आवाज में भड़कते हुए पूछा, मारिया क्या तुम कार चलाना भूल गई हो? अगले ही पल सॉरी किंग कहकर मारिया ने बेमन से जल्दी ही कार की स्पीड बढ़ा दी। टाइगर परेशान मन से सोचता रहा कि मारिया को मना करना चाहिए था, लेकिन वो जानता था कि अगर अरमान ने तेज कार चलाने के लिए कहा है तो मारिया किसी भी कीमत पर धीमी कार नहीं चलाएगी। फिलहाल जल्दी ही अरमान की कार सिंघानिया मेंशन के ठीक सामने खड़ी हुई और वो फटाफट कार से उतरकर लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ सीधे अपने सिंघानिया मेंशन में चला आया। जैसे ही वो घर आया, वैसे ही उसकी नजर सबसे पहले ध्रुव और आहान पर पड़ी। अरमान को सही सलामत देखकर आहान, जो थोड़ी देर पहले उसे बेहोश देखकर बहुत रो रहा था, वो अपने इमोशंस छुपा नहीं पाया और तुरंत जाकर उसे गले से लगा लिया। आहान के अचानक गले लगने से अरमान अचानक दंग रह गया। उसने मन में सोचा, अब इसे क्या हुआ? फिर अरमान ने टेढ़ी नजरों से आहान को देखा और डेंजर वे में घूरते हुए दबंग अंदाज में उससे पूछा, ये क्या हाल बना रखा है आहान? इस बार नंबर कम आया एग्जाम में या फिर मार्क्स कम आए हैं जो इस तरह से रो रहा है? अरमान के मुंह से ये सवाल सुनते ही आहान को अब रियलाइज हुआ कि उसे इस सिचुएशन में अरमान को गले नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि अब आहान का डेविल भाई फिर से जाग चुका था, वो उसका प्यारा भाई नहीं था। अरमान ने झट से आहान को खुद से दूर हटाकर कहा, शांत हो जाओ, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो। आहान ने मुंह बनाते हुए अरमान की तरफ देखा और हां में सिर हिलाया और चुपके से ध्रुव के कान में सरगोशी करते हुए फुसफुसाया, यार भाई वापस से डेविल किंग भाई कैसे बन सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुझे पता है मैं कितना खुश था कि मुझे मेरा प्यारा भाई मिल गया है? याद है जब मेरी शादी रौनक से हो रही थी, तब किस तरह मेरे भाई ने आकर मुझे गोद में उठाया था, फिर मैंने जयमाला पूरी की थी। लेकिन मेरा ये भाई तो मुझे गले तक लगाने को तैयार नहीं है। पता नहीं मेरा वो भाई कहाँ चला गया। इतना कहकर आहान मायूस हो गया। तभी आहान के दिमाग में बिजली की तरह कुछ चमका और उसने ध्रुव की ओर देखकर एकदम से पूछा, ध्रुव एक बात बता, क्या भाई केवल आस्था भाभी और अंश को ही भूल गए हैं? इन दो सालों में तो हमारी जिंदगी में नानी माँ, रौनक, वंशिका भाभी, राधिका भाभी, रश्मि दीदी सब आ गए हैं, तो क्या भाई उन लोगों को भी भूल गए होंगे? जैसे ही आहान ने एकदम से ये सवाल किया, वैसे ही ध्रुव का दिमाग भक से उड़ गया और वो तुरंत अपने सर पर हाथ मारते हुए चिल्लाया, ओ शिट, ये क्या हो गया? हम लोग इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं? हम लोग घर का सामान इधर छुपा रहे हैं, लेकिन हम लोग तो घर की लड़कियों को छुपाने के बारे में बताना ही भूल गए थे। वो सब लड़कियां इस सिचुएशन में अरमान भाई के सामने नहीं आ सकती हैं। ये सोचकर ही ध्रुव और आहान का दिमाग घूम गया था। वहीं सुमित और आकाश, जो अरमान के पीछे पीछे आ रहे थे, वे भी ये बात सुन चुके थे। वहीं टाइगर और मारिया को भी जैसे ही इस बात का ख्याल आया, उनके चेहरे पर भी परेशानी की लकीरें दिखने लगी थी। तभी आकाश और सुमित एक साथ बोले, अभी तक अरमान ने किसी भी लड़की को नहीं देखा है, फटाफट अंदर जाओ और सबको छुपने के लिए बोलो। इतना सुनते ही आहान और ध्रुव अरमान के पीछे पीछे घोड़े की तरह दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि नानी माँ, रौनक, रश्मि, राधिका और वंशिका तो पहले से ही अरमान के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दादाजी भी उनके साथ ही बैठे थे। अरमान जैसे ही वहां पहुंचा, उसकी नजर सबसे पहले नानी माँ पर पड़ी, फिर रश्मि, राधिका, वंशिका और साथ ही रौनक पर पड़ी। उन्हें वहां देखकर अरमान के माथे पर गुस्से की नस उभर आई और उसका अंदाज और भी ज्यादा डेंजरस हो चुका था। दादाजी अरमान को देखकर तुरंत उसके पास चले आए और उसका हाथ थामकर इमोशनल होकर बोले, बच्चे तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन अरमान की आंखें तो नानी माँ और तीनों लड़कियों पर टिकी हुई थी। अरमान की नजरें भांपते हुए तीनों लड़कियों को अजीब सी ठंडक महसूस हुई, क्योंकि अरमान बड़ी ही तेज और जानलेवा नजरों से उन्हें देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें उन्हें झकझोर देंगी। ये महसूस करते हुए चारों की रूह कंपकंपा उठी।